राइट,
जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया। अब लॉ ऑफ
लॉ ऑफ
ग्रेविटी
ग्रेविटी,
है ना, तो हर
यस
किसी पर
यस,
लागू है, चाहे कोई भी हो संसार में, हर कोई ग्रेविटी के कारण जो है जमीन पर चल रहा है और हर किसी पर लागू है, ठीक है। तो वैसे ही अगर लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर एक लॉ है, तो वो हर किसी पर लागू होना चाहिए, और हर कोई इंसान जब कुछ भी सोचेगा, कुछ भी अट्रैक्ट करेगा, तो उसको वो चीज़ मिल जानी चाहिए।
एक्चुअली एक्टिंग और मॉडलिंग का जो शौक था वो मुझे शुरू से ही था, एंड माय लाइफ एक्चुअली जो है काफी कुछ रेजोनेट करती है थ्री इडियट्स मूवी से, कि मन तो कुछ और है लेकिन हम कर कुछ और रहे हैं बिकॉज मॉम एंड डैड ने बोला है, एंड तो दे आर ऑल्सो राइट इन देयर प्लेस बिकॉज उनको चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं एक सेटल लाइफ हो, ज्यादा यू नो स्ट्रगल ना करना पड़े, सो दैट इज देयर माइंड सेट. बट आई वॉज सो अमेज्ड कि मैं इसलिए कर रही थी एमबीए कि मॉम डैड को परेशानी ना हो या उनको दुख ना पहुंचे, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इन टू जॉब ऑल्सो. देन आई वॉज अ मार्केटिंग मैनेजर फॉर अ कैनेडियन कंपनी लेटर दैट. फिर बाद में मैंने उनसे शेयर किया कि यू नो आई एम डूइंग इट जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट मी टू डू इट एंड आप खुश रहें इस वजह से, बट ऑनेस्टली मुझे एक्टिंग करनी है. सो टू माई सरप्राइज दे एब्सोल्युटली सपोर्टेड मी. एंड एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो भी डर के अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं ना, अपने मॉम डैड से कि हमें ये करना है प्लीज डू दैट, यू नेवर नो कि शायद उनको वो आपको सपोर्ट करें एंड दे एक्चुअली बी हैप्पी सी यू हैप्पी. तो मेरे साथ यही हुआ, एंड दैट इज हाउ इट इज नॉट कि मुझे ऐसी क्लिक हुआ या मुझे किसी ने देख लिया कॉफी शॉप में आप हीरोइन बनोगी क्या.
अरे आप तो बिपाशा बसु जैसी लगती हैं, एक्टिंग करेंगी।
नहीं, शुरू से ही था, एंड दैट इज हाउ एक्चुअली एमबीए करते करते मैं जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं मिस इंडिया के लिए मैं करती रही और 3 साल तक रिजेक्ट भी होती रही, लेट मी
ओ
टेल यू दैट.
ओके
यस,
ओके
तो मेरा साइड में चलता रहा, तो मैं करती रही. फोर्थ ईयर में आई गॉट टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड गॉट इन टू मिस एशिया बिकॉज वो दिल से इतनी इच्छा थी ना, कि आई गेस आप दिल से हो जो है ना, कि आप दिल से जो भी चीज चाहो पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलाने में, सो दैट इज व्हाट समथिंग हैपेंड. सो यस, सो दिस इज हाउ इट ऑल एस्केलेटेड फ्रॉम मी बीइंग एन एमबीए ग्रेजुएट टू मार्केटिंग मैनेजर टू बीइंग अ पेजेंट होल्डर एंड गेटिंग इनटू एक्टिंग. सो थिएटर
So
भी किया है मैंने,
your parents were very supportive of it.
वेरी सपोर्टिव एवरीथिंग दैट आई टोल्ड देम. वो कोई भी मेरी लाइफ का कोई भी पार्ट हो आई टेल देम एंड दे आर एक्सट्रीमली सपोर्टिव, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट आई एम डूइंग वेरी वेल बिकॉज एक वो मेंटल सपोर्ट और वो जो मेंटल खुशी रहती है दैट टेक्स यू टू प्लेसेस. सो दैट्स हाउ एमबीए से यहाँ तक होते हुए बहुत मुझे ऐसा करना नहीं पड़ा अपने मॉम डैड को.
यू नो कांक्षा,
यस,
आई वॉज एन एनफोर्समेंट ऑफिसर बिफोर,
वाओ,
या
ओके,
एंड मैंने उसके लिए गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम्स दिए थे, और
हाँ,
पता ही आपको कि वो कितने मुश्किल होते हैं क्लियर करने। तो उसके लिए
बहुत मुश्किल
पढ़ाई
होते हैं.
करी, हाँ उसके लिए पढ़ाई करी, वो क्लियर करे एग्जाम, बिकॉज मेरे उस टाइम पेरेंट्स जो थे वो चाहते थे कि मैं बहुत अच्छी पोजिशन पर जाऊँ और कुछ अच्छा करूँ। तो उस टाइम वो होता है ना, कई बारी व्हेन यू हैव टू गो इन टू अ सर्टेन लाइन, व्हेन यू हैव टू बिकम समथिंग, तो कई बारी आपको भी एक सर्टेन टाइम पर ही जाके क्लैरिटी आती है। टाइम से पहले आपको उस चीज की क्लैरिटी नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, जैसा फ्लो में चल रहे हैं चलते जाओ, तो मैंने उस टाइम कर लिया। एंड देन वंस आई क्लियर इट, वंस आई गॉट इन टू द जॉब, एंड देन आई वॉज पोस्टेड इन पंजाब इन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो उसके बाद मुझे मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था स्पिरिचुअलिटी का, एंड आई रियलाइज दैट कि मैं इतने सालों से ऑलरेडी स्पिरिचुअल फील्ड में हूँ, यू नो सिंस आई वॉज 5 years ओल्ड आई वॉज इन टू स्पिरिचुअलिटी। तो अगर मैं ऑलरेडी इसमें इतनी ज़्यादा हूँ और इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर करा है मैंने इसको, अपना मैक्सिमम टाइम अपनी लाइफ का स्पिरिचुअलिटी को दिया है, तो करते करते वीडियो समझ आया कि दिस इज़ वॉट आई हैव टू डू। बट एक आज तक एक क्यों ना कैसा करियर नहीं बना कि स्पिरिचुअल गाइड्स का भी कोई करियर हो सकता है, सिर्फ गुरु होते हैं। है ना, मतलब
हाँ,
भारत में सिर्फ गुरु हैं, जबकि बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में देर आर स्पिरिचुअल कोचेज ऑल्सो। सो
यस,
विद द यू नो टाइम आई रियलाइज नो, आई वॉन्ट टू बी अ स्पिरिचुअल कोच, दैट इज वॉट आई वॉन्ट। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ गुरु.
राइट राइट राइट
सो दैट इज
बट
यू वर सेइंग समथिंग.
एक्चुअली मैं यही पूछना चाहती थी कि व्हेन यू से स्पिरिचुअलिटी, सो ये कैसे लाइक रियलाइज कब हुआ कि दिस इज समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू मी और मुझे ये परस्यू करना है?
बिकॉज जब मैं 5 साल की थी ना कांक्षा, तो मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल होता था कि भगवान कौन है, कहाँ है. क्योंकि मैं थी एक क्रिश्चियन स्कूल में, और मैं
ओके
मेरा जन्म हुआ था हिंदू परिवार में, और हमारे घर के पास सिर्फ एक गुरुद्वारा था उस टाइम पर. अभी तो मंदिर भी है.
ओके
तो अब मैं,
हाँ
3 रिलीजन्स से एक्सपोजर था मेरा, एक हिंदुइज्म, एक सिखिज्म और एक क्रिश्चियनिटी. और जब मैं स्कूल जाती थी, हमारे क्रिश्चियन स्कूल में, तो सभी मजहब के जितने भी बच्चे होते थे, लड़कियां होती थी, गर्ल्स स्कूल था, तो वो अलग अलग मजहब से आती थी. एक कोई सरदारनी थी, कोई जैन थी, कोई बंगाली थी, तो सब इकट्ठे प्रेयर कर रहे हैं एक ही स्काई के नीचे, एक ही आसमान के नीचे प्रेयर हो रही है. तो मैं सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक ही आसमान के नीचे प्रेयर कर रहे हो और ये बोल रहे हो कि भगवान एक है, पर इतने
राइट
सारे मजहब के लोग इकट्ठे कह रहे हैं भगवान एक है, तो है कौन भगवान? तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि तुम किसको प्रेयर कर रही हो. एक फ्रेंड बोलती कि मैं गुरु नानक जी को प्रेयर कर रही हूँ. तो मैंने दूसरी फ्रेंड से पूछा, वो कहती है कि मैं जीसस क्राइस्ट को प्रेयर कर रही हूँ. तीसरी कहती है मैं हनुमान जी को प्रेयर कर रही हूँ. मैं कंफ्यूज, मैंने कहा ये क्या हो गया, तो बड़े सारे भगवान है या तो ऊपर बैठ के सब पार्टी कर रहे हैं.
34 करोड़ भगवान है अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म.
नहीं, दैट इज गॉड्स एंड गॉडेसेस. नाउ देयर इज अ
यस
लिटिल बिट डिफरेंस हियर. गॉड्स एंड गॉडेसेस आर बेसिकली एट्रीब्यूटिव क्वालिटीज ऑफ गॉड. भगवान
या
एक है, भगवान एक है,
राइट
पर उनकी जो क्वालिटीज हैं अलग अलग. जैसे जो हमारी सरस्वती माता है, वो प्रेजेंट करती है गॉड की क्वालिटी, उनका नॉलेज और म्यूजिक,
नॉलेज.
ठीक है. वैसे जो लक्ष्मी माँ है, वो प्रेजेंट करती है अबंडेंस, वेल्थ. तो ये सारे
राइट
भगवान की क्वालिटीज हैं जो कि अलग अलग गॉड्स एंड गॉडेसेस प्रेजेंट करते हैं. तो धीरे धीरे इन माई लाइफ, जब मैं आगे बढ़ती गई और अपने सत्संग भी जाती थी, सेवा भी करती थी, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रही थी कि मैं किसी गुरु को, किसी मेंटोर को कैसे ढूंढूं. तो 10 साल तो
राइट
मैंने यही एक्सप्लोर करा कि गुरु कैसे ढूंढने हैं, क्योंकि मुझे एक बात बहुत अच्छे से क्लियर थी कि जितना मेरे जो गुरु हैं, जो मेरे टीचर पहुंचे होंगे, मैं वहीं तक ही पहुंच पाऊंगी. इतनी मुझे अंदरूनी समझ थी, इंट्यूटिव नॉलेज थी. अगर आपका टीचर जो है, आपके जो गुरु हैं, वो अगर खुद प्राइमरी क्लास तक पढ़े हो, तो वो आपको उतना ही पढ़ा पाएंगे.
एग्जैक्टली हाँ
पर अगर आपके जो गुरु हैं वो प्रिंसिपल हो, तो वो आपको भी प्रिंसिपल बना देंगे. तो
वेरी वेल
मैंने
सेड. हाँ
सबसे ज्यादा
हाँ
वक्त लगाया गुरु ढूंढने में, 10 साल से ज्यादा लगा दिया मैंने. और धीरे
हाँ
धीरे क्या हुआ कि प्रैक्टिस कर करके, सही तरीके से जो उन्होंने मुझे मेडिटेशन सिखाया, वो प्रैक्टिस कर करके मेरे अंदर कुछ ना कुछ जागरूकता आती गई और कुछ ऐसी पावर्स आती गई, जिससे मुझे रियलाइज हुआ कि देर इज समथिंग मोर टू लाइफ. सिर्फ खाना पीना सोना नहीं है, और भी बहुत कुछ है जिंदगी में, जो कि 99% लोग दुनिया के एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं. इतना कुछ है हमारे जीवन में. तो जब वो धीरे धीरे आप में, जब कोई भी मेडिटेशन सही तरीके से करता है पूर्ण गुरु के अंडर, तो जब उनकी पावर्स बढ़ती जाती हैं अंदर, तो तब उन्हें रियलाइज होता है कि मैं किसी और पाथ पे चलने लगा हूँ, एंड दिस इज समथिंग. तो जब मैंने इतने साल बिता लिए इस फील्ड में, स्पिरिचुअलिटी में, मैं जब मैक्सिमम टाइम वहां पे बिताती थी, तो एक पॉइंट पर आके मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे यही करना है, क्योंकि मैंने सारा अपना टाइम यही बिताया. कॉलेज कॉलेज से भी सीधा भागती थी सेवा करने के लिए.
ओके
इतना पागलपन
अच्छा
था कि जल्दी से
हाँ
कर्म कट जाए, जल्दी से जान लूं कि परमात्मा कौन है, बस.
ओ माय गॉड हाँ
तो बस.
ये यू आर एन इनकार्नेट सोल दैट्स फॉर श्योर. अदरवाइज कोई इतनी छोटी उम्र में इतना तो नहीं होता है. डेफिनेटली ये ओल्ड जब हम एक उम्र में पहुंच जाते हैं तब ये सब आता है. तो हाँ आप एक बहुत एक्सपीरियंस, बट छोटेपन से अगर इतना सब कुछ है तो डेफिनेटली.
इसके पीछे भी एक सीक्रेट है आकांक्षा, पता क्या है? ये मैं अपने अवेकनिंग सेशंस में बोलती हूँ सीनियर सिटीजन्स को कि ये एक सीक्रेट है जो हम सबको पता नहीं है. वो ये कि जैसे हम, कोई भी बच्चा पैदा होता है, तो वो फिर से सारी स्टडी करता है, फिर से स्कूल जाता है, ठीक है. बट एक स्पिरिचुअलिटी एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है, अध्यात्म एक ऐसा अकेला सब्जेक्ट है कि आपके नए जन्म में वो वहां से शुरू होता है जहां पर आपने पहले खत्म करो, वो आपको फिर से नहीं पढ़ना पड़ता, वो आपको सब याद रहता है। यही वजह है कि कई बच्चों का विजडम इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो 4-5 साल की उम्र में भी उनको ऑलरेडी ज्ञान होता है, क्योंकि वो पहले से उस ज्ञान को लेकर आ रहे हैं।
एग्जैक्टली
अभी मैं आप पर वापस आना चाहती हूँ। तो
बोलिए।
हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि आपने एक लाइन बोली थी बॉलीवुड की, शाहरुख खान की बेसिकली, कि जब हम किसी दिल को पूरे किसी चीज को हम
किसी
पूरे दिल
चीज
से
को
चाहें तो पूरी कायनात उसे हमें पाने में मदद करती है।
बिल्कुल बिल्कुल
तो क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करती हैं, और क्या आपने उसको प्रैक्टिस करा हुआ है अपनी लाइफ में?
मेरी लाइफ में काफी बड़े बड़े लाइफ चेंजिंग इवेंट्स ऐसे हुए हैं कि जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता भी नहीं था, मैं तब भी उसको प्रैक्टिस अनजाने में ही कर रही थी। पहले तो मैं बोलूंगी जो मेरा पैजेंट जो मैंने मिस एशिया का जीता, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का जीता था।
हाँ
एंड आई सॉ टियर्स इन आवर आईज, और मैंने दे और मुझे ना तब ये लगा रोता कौन है, क्राउन मिला है, एवरीबडी इज लुकिंग एट यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, ऐसे मौके पे कौन रोता है।
इट वाज 2004, 2004 में मिला था उनको क्राउन मेरे ख्याल से।
2000 इट इज 2000
2000, ओके, आई थॉट
नहीं
शायद 1994 या 2004, मुझे ऐसा लगा शायद 1994 में ऐश्वर्या राय को मिला होगा। ऐश्वर्या राय को।
मैं अपनी बालकनी में गई वही टाइम पे, एंड आई जस्ट इमेजिन माय सेल्फ कि मुझे क्राउन मिला है, एंड आई एम जस्ट वेविंग टू एवरीवन, और पूरी मीडिया मेरे पिक्चर्स ले रही है, और मैं अपने आप से ही सवाल बना रही हूँ और अपने आप को ही जवाब दे रही हूँ। और तब तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे कुछ लॉ ऑफ ये सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये अब जाके लोगों को इतना पता चला है, एंड पीपल आर सो अवेयर अबाउट इट कि ऐसी भी कोई चीज होती है। देन एक तो ये हुआ, देन टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिर स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली मेरे अंदर भी शुरू से ही था। छोटे से ही मैं बहुत मेडिटेशन मेडिटेशन मुझे अकल भी नहीं थी कि कैसे करते, मुझे बस एक चीज पता थी कि आराम से बैठ जाते हैं स्टिल होके और सिर्फ ध्यान लगाना होता है। ये मैं शुरू से ही करती रहती थी। बेसिकली मे बी स्पिरिचुअलिटी गॉट मी इनटू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट इज हाउ थिंग्स हैव वर्कड आउट फॉर मी। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद चिरंजीवी सर, क्योंकि आई वाज सो अमेज्ड, तेलुगु मूवी में जब भी देखती थी तो ना एक अमेज ऐसे हो जाता कि ऐसे कैसे होता है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दैट, एंड मैं हमेशा सोचती थी कि मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। एंड कहीं से मैं एक पार्टी में गई जहां पे मुझे जाना भी नहीं था, एंड आई वॉज नॉट इन द मूड एट ऑल, बट स्टिल आई वॉज लाइक कि चले जाते हैं, मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी। आई वेंट टू दिस पार्टी एंड विदाउट माई नॉलेज आई जस्ट कम अक्रॉस टू द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, एंड ही एट द टाइम आई वॉज ऑलरेडी सो ही वॉज लुकिंग फॉर अ गर्ल हु इज एथलेटिक लुकिंग, हु इज अ गुड एक्टर एंड एवरीथिंग, ऑल द एट्रीब्यूट, एंड ही सॉ मी एंड इज लाइक वुड यू ऑडिशन मी ऑडिशन फॉर द मूवी। उसमें एंड चिरंजीवी देन लेटर, उस टाइम पे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि मूवी में कौन है कौन नहीं है, ही जस्ट सेड कि दिस इज द कैरेक्टर, वुड यू लाइक टू ऑडिशन फॉर दिस, ऑडिशन वगैरह हुआ लेटर, फिर उन्होंने फिर मुझे मेरा कैरेक्टर बताया, एंड देन एक्टर बताया। सबसे ज्यादा जो मेरे लिए अमेजिंग सरप्राइजिंग शॉकिंग बात थी, व्हेन ही सेड कि चिरंजीवी सर के साथ में यू हैव द सीन्स एंड दिस इज द मूवी दैट यू गोना बी, यू कांट लाइक आई रियली कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, कि जिस जो मुझे उस टाइम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान हुआ, एंड द ग्रेटिट्यूड एंड द फुलफिलमेंट एंड द हैप्पीनेस दैट आई फेल्ट एट दैट मोमेंट, आई एम लाइक नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और आप इसको अच्छे से करो, यू कैन एक्चुअली हैव एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू हैव इन योर लाइफ, दैट्स वॉट आई कंप्लीटली बिलीव, बिकॉज दैट इज वॉट माई लाइफ has become till date.
चलो मैं
yes.
आपसे एक सवाल पूछती हूँ। जैसे आपने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, तो मैंने आज तक सिर्फ कर्म को प्रैक्टिस करा है कि अपना कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, हमेशा आज तक यही प्रैक्टिस करा है, ठीक है
Which is also
ठीक है। तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, बेसिकली व्हेन वी कॉल इट अ लॉ, सो लॉ का तो मतलब हो गया कि वो हर किसी पर लागू होना चाहिए, बिकॉज वो लॉ है, ठीक है.
राइट राइट,
जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया. अब लॉ ऑफ
लॉ ऑफ
ग्रेविटी
ग्रेविटी,
है ना, तो हर
यस
किसी पर
यस,
लागू है, चाहे कोई भी हो संसार में, हर कोई ग्रेविटी के कारण जो है जमीन पर चल रहा है और हर किसी पर लागू है, ठीक है. तो वैसे ही अगर लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर एक लॉ है तो वो हर किसी पर लागू होना चाहिए. और हर कोई इंसान जब कुछ भी सोचेगा, कुछ भी अट्रैक्ट करेगा, तो उसको वो चीज मिल जानी चाहिए, ठीक है. पर मैंने ऐसा देखा है कि ऐसा सबके साथ नहीं होता है. मतलब कि ऐसे बहुत लोग हैं जो कि प्रैक्टिस करते हैं इसको, पर उनको, हर किसी को वो चीज़ नहीं मिलती है. और एक और इसमें जो एक पॉइंट आता है मेरे माइंड में, कि अगर हर किसी को सब कुछ मिलने लग गया जो वो चाह रहा है, तो दुनिया कहाँ पहुंच जाएगी. इस दुनिया का क्या होगा. क्योंकि
एक्चुअली इसका जवाब है मेरे पास।
सबकी चाहत बहुत अलग सी होती है, बहुत अजीब अजीब सी होती है. तो वो एक
सबसे
मैं क्या जवाब है बताओ.
पहली बात ना, जो आपने बोला कि अगर हर इंसान को वो मिलने लगे जो वो चाहता है, सबसे पहली बात जो आप चाहते हो वो मैं नहीं चाहती। तो हमारी चाहते बहुत डिफरेंट हैं, और ये यूनिवर्स और ये गैलेक्सी इतना बड़ा है कि उसमें हमारी चाहतों का कुछ मैटर नहीं करता है। तो आप कितना भी चाह लेंगे, चाह चाह कर भी इतना नहीं चाह पाएंगे कि यूनिवर्स के पास कम पड़ जाए।
नहीं,
ओके
मैं उस सेंस में नहीं बोल रही थी. वो तो मैं समझती हूँ कि यूनिवर्स इज इन अबंडेंस, मतलब कि सब जगह परमात्मा और सब कुछ अबंडेंस में है, वो तो मैं समझती हूँ. बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबकी जैसे चाहत होती है, हर किसी की इंटेंशंस अच्छी नहीं होती हैं. जैसे हिटलर की भी तो चाहत थी ना, उसने क्या करा, है ना. तो
राइट
अगर हर किसी की चाहत पूरी होने लग गई, तो देश कहाँ पहुंच जाएगा, संसार कहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि हर किसी की इंटेंशंस तो अच्छी होती नहीं है. तो फिर परमात्मा क्या
दैट
करे, क्या वो सबकी चाहत पूरी करेगा.
ये भी क्या होता है ना, लाइक यू सेट कर्मा। अभी आप देखो, किसी की बुरी इंटेंशन होती है वो उसमें भी कामयाब होता है। ओके इंटेंशन इंटेंशन है। जैसे टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है, इट्स अ न्यूट्रल थिंग। अच्छी या बुरी तो मैं और आप ही बनाते हैं उसको, राइट? लेकिन कौन अपनी अपनी इंटेंशन को कितनी शिद्दत से कर्मा। अगेन, अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ पाया है या आपने अपनी लाइफ में कुछ पाया है, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ आप करते रहे। ऐसे नहीं कि अब मैं आज चाहूं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं और उसके लिए किया कुछ नहीं, तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। कर्मा
बिल्कुल
डेफिनेटली गो हैंड इन हैंड,
बिल्कुल बिल्कुल
लेकिन कौन कितनी शिद्दत से अपने इंटेंशन को अंजाम देता है, उसके लिए कार्यक्रम करता रहता है, कर्मा करता रहता है। जैसे महाभारत था, जो पांडव और कौरव थे, उसमें हम और आप अच्छा और बुरा देखते हैं, लेकिन वो दोनों ही अपनी जगह सही थे अपने अपने हिसाब से।
बिल्कुल बिल्कुल
तो जिसने अपने आप को गिल्ट दिया या जिसने अपने लिए जैसा सोचा उसको वैसा ही मिला। वैसी ये चीज है कि कौन अपने हिसाब से, अपने इंटेंशन के हिसाब से कर्म करता है, कौन उसको शिद्दत से करता है, वो अच्छी और बुरी दोनों ही होती है डेफिनेटली। इसीलिए दुनिया में बहुत बुरी चीजें भी होती हैं, बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं। तो हर तरीके की दुनिया, हर तरीके के हालात मौजूद हैं। फर्क ये पड़ता है कि आप और मैं क्या चूज करते हैं उसमें से, कि मुझे ऐसा संसार चाहिए या मुझे ऐसा संसार चाहिए।
राइट, एब्सोल्युटली वेरी गुड आंसर. इसमें मैं ये एक दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि कर्म के बिना कुछ नहीं होता. मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जो
एब्सोल्युटली
कि पूरा दिन अफर्मेशंस करते हैं, सुबह उठते सार विजुअलाइज करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, पर कर्म नहीं करते. अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो कैसे कुछ पा पाएंगे.
कुछ एनर्जी नहीं है ना, कुछ मूवमेंट ही नहीं है उसमें। तो आप कुछ मूवमेंट, वो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ना, आप
राइट
एक्शन ही नहीं दे रहे हैं तो
राइट.
रिएक्शन कैसे मिलेगा?
मतलब अगर हम देखो पूरा दिन हम बोलते रहे कि मुझे आज जो है राजमा चावल मिल जाए खाने के लिए, पर हम उसको बनाए ना, ठीक है, और कर्म नहीं कर रहे तो मिलेंगे नहीं. दूसरा, अगर किसी ने बना दिया पर अगर हम उसको अपने हाथ को आगे बढ़ा नहीं रहे खाने के लिए, तो फिर हम खा नहीं पाएंगे. तो कहीं ना कहीं छोटा छोटा एक कर्म होता है. हर चीज सोच से स्टार्ट होती है, पर कर्म तो करना ही पड़ता है. एक मुझे
करना
राजमा
पड़ता
चावल
है।
की बात से ध्यान आया यार. अपना ना ये थोड़ा कैमरा और थोड़ा सा इधर कर लो. नहीं, इस तरफ इस तरफ.
ऐसे हाँ
हाँ बस अब ठीक है. तो राजमा चावल से मुझे एक और चीज ध्यान आई कि एक और क्वेश्चन है मेरा. लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर जो मेरे जहन में काफ़ी वक्त से था।
हम्म,
एक बार मैं अपने दोस्त के साथ जो है हम सत्संग जा रहे थे इकट्ठे, और वहाँ पर लंगर बना हुआ था, तो लंगर खाने जा रहे थे। तो वो एक दिन पहले से सोच रही थी कि मुझे राजमा चावल मिल जाए, सोचे जा रही थी राजमा चावल मिल जाए कि मुझे वही खाना है। जब वहां पे पहुंची तो राजमा चावल बने हुए थे और उसने खा लिए। तो उसके बाद हमारी इसी के ऊपर बात स्टार्ट हो गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो उसने कहा कि देखो मैं सोच रही थी, मैं इसको सोचती रही पूरा वक्त, तो मुझे वो चीज़ मिल गया, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने कहा कि नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सोचने की वजह से या तुम्हारे चाहने की वजह से तुम्हें मिल गया। तो हमने इसके हम तह तक गए। मैं ये भी नहीं कह रही थी कि मैं बिल्कुल सच थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसके तह तक जाते हैं, पता लगाते हैं कि क्या सच है। तो हम जिन्होंने लंगर बनाया था, हम उनके पास गए, मैनेजमेंट के पास, और हमने उनसे पूछा कि आपने कब प्लानिंग करी थी राजमा चावल बनाने की।
यू गाइस एक्चुअली, अच्छा
हाँ
सच में गए तह तक,
हाँ तो क्या
ओके
इसके सोचने की वजह से उन्होंने सोचा मॉर्निंग में कि हम राजमा चावल बनाएंगे दोपहर को, या एक कब हुआ था ये?
राइट।
तो उन्होंने बताया हमें कि हमने एक हफ्ता पहले पूरे हफ्ते का स्केड्यूल डिसाइड कर लिया था कि किस दिन क्या बनेगा, और हमने एक हफ्ता पहले डिसाइड कर लिया था कि इस दिन दोपहर में राजमा चावल बनेंगे।
हाँ
अब आप बताओ कि क्या आपके
हाँ
चाहने की वजह से राजमा चावल आए हैं, या और भी फैक्टर्स काम कर रहे थे, या फिर आप उस चीज को इसीलिए चाह रहे थे, या आप उसको अट्रैक्ट कर रहे थे क्योंकि वो आपके साथ होने वाली ही थी इवेंचुअली?
अभी इस एंगल में हम लोग डेस्टिनी भी ऐड कर सकते हैं, बूम।
नाउ नाउ वॉज इट सपोज टू हैपन कि चिरंजीवी सर वॉज सपोज टू मीट यू एंड यू आर ऑलरेडी अट्रैक्टिंग वॉट लाइफ वॉज गोइंग टू गिव यू, या फिर तुम्हारे चाहने की वजह से वो आए?
मैं तो यही बोलूंगी कि मेरी चाहने की वजह से आए, बिकॉज मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, बहुत ही सिंपल से घर से हूँ, देहरादून शहर से हूँ, और
देहरादून से हो तुम? अच्छा
देहरादून से तो कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। और मैं तो यही बोलूंगी कि मैं क्योंकि एक्टिंग में आना चाहती थी, मैं थिएटर भी करती रही, बिकॉज आपको जिस चीज में जाना है आपको उसके लिए वो डिजर्विंग भी तो होना चाहिए ना,
बिल्कुल बिल्कुल
तो डेफिनेटली। एंड काफी सारे फैक्टर्स एक्चुअली डिपेंड करते हैं कि आपको कोई चीज अगर मिलती है या नहीं मिलती है, बिकॉज मेरा मानना ये है किसी भी चीज को होने के 50% चांसेस हैं कि हो सकते हैं, 50% है कि नहीं हो सकते हैं। तो जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमारे फ्यूचर में क्या है, हो सकता है 50% चांसेस अच्छे ही हो, तो एटलीस्ट हम खुश तो रह सकते हैं।
तो बेसिकली हम उसी पॉइंट पर आ गए कि हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। हमने चाह लिया
करेक्ट,
कि हमने ये चाहा कि ठीक है हम ये चाहते हैं होना, अब उसके 50-50% चांसेस हैं, जो भी परसेंट चांसेस हैं, पर हमने अपना कर्म करना है, फिर वो हो या ना हो, दैट इज इन गॉड्स और यूनिवर्सल्स हैंड, वट एवर यू बिलीव।
करेक्ट, करेक्ट, राइट। बिकॉज
गुड
काफी लोग ऐसे हैं जो कैसे कैसे एनवायरनमेंट में से बच के आ जाते हैं, तो काफी आप जितना इस चीज को बात करेंगे, ले दे के बात वहीं आ जाती है कि आप क्या कर रहे हैं उस चीज को पाने के लिए, और आप बेसिकली आप कितना चाहते हैं उस चीज के लिए, क्योंकि हम चाहते तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन किसी किसी को हम कुछ ज्यादा ही चाहते हैं बाकी चीज को इतना नहीं, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सो वी आर स्टिल ओके विद दैट।
तो इसी मौके पर मैं अपने एक बार दर्शकों को, श्रोताओं को फिर से बताना चाहूंगी कि आप सुन रहे हैं शो कर्म प्रधान को। आज है मेरे साथ आकांक्षा, मैं हूं आपकी होस्ट कशिश गंभीर, और आज इस एपिसोड में हम कार्मिक बस स्पिरिचुअलिटी जो है, अपनी एक बुक स्पिरिचुअल वोकैब फॉर बिगिनर्स जो है, उसका लिंक इस एपिसोड के साथ दे रहा है। और आप अगर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अच्छा एक बात बताएं, आप 3 times विनर रह चुकी हैं नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में, एम आई राइट?
जी, यस,
तो अब ये एक्टिंग और मॉडलिंग में आते सार साथ में आप बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कैसे आ गई? मतलब ये आपका शौक था या फिर आपने सोचा कि मुझे डाइवर्सिफाई करना चाहिए आज के टाइम में?
ये मैं इसका रुख कहीं और लेना चाहूंगी. ये मैंने स्टार्ट बेसिकली किया था अपने मेंटल हेल्थ के लिए, बिकॉज ये शुरुआत हुई थी लॉकडाउन के दौरान. सब बंद हो गया, सब कुछ ठहर गया था, और मैं जॉब वॉब भी सब छोड़ चुकी थी, और अपने एक्टिंग फील्ड में मैं भी ट्रांजिट ही कर रही थी. और लॉकडाउन हुआ तो मैं डर गई कि अभी तो स्टार्ट हो रहा था, अभी तो सब कुछ अच्छा हो रहा था, अभी ये कैसे. देन आई वॉज लाइक कि डोंट लूज होप, अभी हम क्या कर सकते हैं, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या हो सकता है. तो वो टाइम पे ना फिर ऑनलाइन पे बहुत सब चीजें होने लगी. बहुत सारे काम बहुत लेट आए ऑनलाइन, सब कुछ नहीं होता था. लाइक जैसे हम पहले ऑडिशन फिजिकली जाते थे, वो भी फिर ऑनलाइन आने लगे, कास्टिंग डायरेक्टर्स फिर मंगाने लगे. लेकिन जब तक मुझे ऑडिशंस के अपडेट्स आए, तब तक आई वाज स्टार्टिंग यू नो टू गेट इनटू दैट जोन कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब मैं कैसे मिलूंगी, अब मैं कैसे जाऊंगी. तो वो टाइम पे फिर मैंने होम वर्कआउट स्टार्ट किया. सो मेरी सिस्टर है, वो ट्रेनर है ऑलरेडी, एंड वो बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर.
आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली. आई ऑल्सो हैव अ ब्रदर.
वो कितना भी ग्रेट हो अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में, बट
बिल्कुल
हमारे लिए वो हमारे भाई बहन है, एंड देर नेवर ग्रेट.
बिल्कुल सही कहा आपने.
सो शी इज अ ट्रेनर एंड शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट आल्सो, पर मैंने कभी सुनी नहीं, मैंने सिर्फ अपनी सुनी. सो दैट इज व्हेन आई सेड कि बहन मुझे होम होम वर्कआउट करवा दे. सो मैंने स्टार्ट किया, एंड उस टाइम पे मतलब, तो दैट इज हाउ आई गॉट इनटू, एंड करते करते बहुत टाइम लगा. ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डिंग का मैंने सोचा, मुझे एक्चुअली 1.5 साल लगा कुछ भी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए. और डाइट भी मैंने कंटिन्यू रखा, बिकॉज मुझे कंट्रोल में रहना, रूटीन में रहना अच्छा लगता है. इफ आई एम इनटू अ रूटीन तो मुझे लगता है मेरी लाइफ कंट्रोल में है, एंड व्हेन आई डोंट फॉलो माय रूटीन तो मुझे ऐसे लगता है कि एवरीथिंग इज जस्ट स्लिपिंग आउट ऑफ माय हैंड. सो माय डाइट एंड माय वर्कआउट एक्चुअली केप्ट मी इन कंट्रोल, एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू सीइंग द रिजल्ट आई वाज लाइक कि. एंड देन मैंने ऑनलाइन कंपटीशन भी ज्वाइन किया, एंड देन उसमें, एंड देन ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 40,000 पीपल पार्टिसिपेटेड, बिकॉज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, तो वो कितने भी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे. एंड आई वाज इन टॉप 5 अमंग 40,000. सो दैट इज व्हेन आई गॉट दिस कॉन्फिडेंस कि अभी आई कैन गो मोर एंड जस्ट पार्टिसिपेट एंड मोर. और इस बीच में फिर मूवी वगैरह का भी सीन हुआ, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू बॉडी बिल्डिंग, बिकॉज ये बहुत ही अच्छे तरीके से कोलैब हुआ, जो रिक्वायरमेंट थी मूवी में और जो मैं बॉडी बिल्डिंग में थी. सो दे एक्चुअली वेंट वेरी वेल हैंड टू हैंड.
सो बेसिकली योर लाइफ हैज बीन गोइंग इन अ फ्लो, आई सी.
मेरा या मतलब मैं देख नहीं पा रही थी कि आगे आने वाला क्या है, बट वो ही एक्शंस, कर्मा. आई एम जस्ट कमिंग बैक कि मैंने अपना वो चालू रखा. आई जस्ट डिडंट स्टॉप, एंड आई कंटिन्यू डूइंग व्हाट आई फेल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर माय फील्ड. बट इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, बिकॉज
ये
कंसंट्रेशन
नहीं
था
पता
ना,
था.
कुछ ये नहीं पता था, और कुछ वो भी नहीं था, क्या बोलते हैं कि पार्टीज या फिर कहीं बाहर जाना, या फिर आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बेसिकली
ऐसा
कुछ भी हो
होता है कि
सकता है.
हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं सोचकर, कुछ हमारा पर्पस कुछ और होता है, पर कई बार वो चीज हमें किसी और रास्ते पर ले जाती है. अभी आई डोंट नो ये एप्ट है या नहीं है. जस्ट जस्ट कुछ देर पहले ही एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि देखो, जो फेसबुक है वो स्टार्ट हुआ था एक सोशल नेटवर्किंग साइट की तरह, तो उसका पर्पस था लोगों को कनेक्ट करना. पर आज की डेट में जो वो बन गया है, बेसिकली आप उसके थ्रू एडवर्टाइज कर रहे हो, वो बिल्कुल कुछ और ही प्लेटफॉर्म बन चुका है. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कनेक्टिंग, इट्स मोर अबाउट एडवर्टाइजिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स. बेसिकली ऑल्सो एवरीबडी इज देयर एंड ऑल ऑफ देयर इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर. तो बन कुछ और जाता है कई बारी. खैर, हम वापस से आते हैं आपके टॉपिक पर. और एक बात बताइए, जैसे कि आप एक एथलीट भी हैं, है ना, तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वैसे तो आत्मा का कोई रंग रूप जेंडर नहीं होता है, पर अगर हम दुनियावी पर्सपेक्टिव से देखें तो जब भी हम किसी भी फील्ड में कदम रखते हैं, तो आज की डेट में भी इंडिया में हम देखें तो ऐसी जो भी करियर फील्ड्स रही हैं जहाँ पर मेल डोमिनेशन बहुत ज़्यादा टाइम रहा है, तो वहाँ पर वुमेन के लिए जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आपने जब अपने करियर की शुरुआत करी से एज अ बॉडी बिल्डर, तो आपको उस टाइम कितना स्ट्रगल करना पड़ा था, बिकॉज यू वेंट टू ये जो अवार्ड्स वगैरह थे ये भी, तो क्या आपकी फील्ड में कोई स्ट्रगल था? क्या एक औरत होने के नाते आपको ऐसा लगा कि अगर मैं औरत नहीं मेल होती इंस्टेड तो मुझे शायद अपना स्ट्रगल ना करना पड़ता, ऐसा लगा कुछ?
मैं अपनी हर फील्ड से पर्टिकुलर बात करती हूँ. फर्स्ट कमिंग टू द बॉडी बिल्डिंग, उसमें सी दिस इज ऑल फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल. इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट डेफिनेटली एक टाइम पर मुझे ये लगा. बट दैट इज नॉट, ये दुनियावी चीज नहीं थी, दैट इज मोर नेचुरल थिंग, कि जहां मुझे लगा कि अगर मैं आदमी होती तो मेरे मसल थोड़े ज्यादा अच्छे होते. क्योंकि इसमें तो कैटेगरीज होते
ज्यादा
हैं. क्योंकि
बनाने
इसमें तो कैटेगरीज होती है. तो वो बेसिकली स्पोर्ट्समैनशिप एक ऐसी जगह है जहां पे इतना भेदभाव
थे।
नहीं
अच्छा, एक बार
होता
अपने
है.
मसल्स तो
मैंने
दिखा दो। शो मी योर
तो
मसल्स। वाह, नाइस।
नहीं, वैसे तो कुछ नहीं हुआ अगर ऐसा कुछ भेदभाव हुआ होता, क्योंकि मेरा किसी भी इंडस्ट्री में, मैं जिस भी करियर में हूँ उससे मेरा कोई भी कनेक्शन पहला है नहीं. मैं ही पहली हूँ अपनी फैमिली से जो एक बॉडी बिल्डिंग एथलीट भी है और एक एक्टर भी है और जिसने कॉर्पोरेट जॉब भी किया है. सो मुझे बॉडी बिल्डिंग में तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला नहीं, बिकॉज उसमें कैटेगरीज होती थी. आई वॉज इन फीमेल कैटेगरी, सो डेफिनेटली उसमें मेल फीमेल का कोई सिस्टम ही नहीं था. इट वॉज वेरी वेल डन. कमिंग टू द आर्टिस्टिक इंडस्ट्री एंड द एक्टिंग इंडस्ट्री, सो डेफिनेटली जो चीज मैंने पहली बोली कि आप जैसी दुनिया चाहेंगे अपने लिए, आपको वैसी ही दुनिया मिलेगी. हर तरीके के लोग होते हैं. सो व्हेन आई वाज न्यू इन द इंडस्ट्री, डेफिनेटली देवर पीपल, देवर गाइज हु लाइक यू नो कि ये तो नहीं है, इसको तो कुछ नहीं पता है कि ये मूवी बन रही है और इसमें ये है. तो उस चक्कर में कि चलो कॉफी पीते हैं एंड देन मिलते हैं, मैं तुम्हारा रंग सांवला है, तुम थोड़ा इसके लिए कराओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा एंड यू नो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ. सो
हाँ,
इस तरीके की कुछ चीजें हुई. उन गधों को ये नहीं पता था कि मैं MBA करके बैठी हूँ. इतनी भी छोटी बच्ची नहीं हूँ. सो डेफिनेटली, बट एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आज के टाइम में इंडस्ट्री बहुत प्रोफेशनल हो गई है, और डिपेंड करता है कि
नहीं,
जो
तेलुगु इंडस्ट्री
जो
या बॉलीवुड इंडस्ट्री?
बहुत 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 बहुत
बहुत।
पहले कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह कहाँ होते थे. नाउ यू नो कि आपको कहाँ जाना
या
है. अगर आपको पहले आपको पता ही
राइट।
नहीं था कि कहाँ जाना है, मुझे काम कौन देगा, मैं कहाँ अपना टैलेंट दिखाऊँ. नाउ यू हैव द कास्टिंग डायरेक्टर्स, यू नो कि
राइट
कहाँ पे जाना है. सो इट
राइट
हैज बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड. एंड सिंस एवरीबडी इज इन बिजनेस, सबको पैसा कमाना है. इट्स नॉट लाइक यू कैन मेक अ यू नो शॉर्ट वे आउट कि चलो ठीक है ये करके मैं यहाँ पे हो जाऊंगी. बट डेफिनेटली जो एक लड़का जहां जहां पहुंच सकता है, आप एक लड़की के होने के नाते टाइम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप जगहों पर नहीं जा सकते बिकॉज आपको ये डर होता है कि पता नहीं मैं जिनसे मिलूंगी कैसे लोग होंगे. तो एक वो डेफिनेटली एक डर रहता है बीइंग अ फीमेल. बट
राइट।
देन एज व्हेन यू गो अप द लैडर एंड यू मीट मोर प्रोफेशनल पीपल, उनके खुद के अपने टाइमिंग्स होते हैं. दे कॉल यू इन ऑफिस एंड दे देमसेल्व्स डोंट वांट टू पार्टी आउट दैट मच, या फिर एक लेट नाइट वगैरह कोई सीन नहीं होता है. देन
ओके,
कमिंग टू द कॉर्पोरेट.
आई हैव अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू। यू सेड कि आप पहले से तेलुगु इंडस्ट्री में जाना चाह रहे थे,
यस.
बॉलीवुड में क्यों नहीं?
बॉलीवुड में मुझे ऐसा लगता है कि तेलुगु में एक्सेप्टेंस ज्यादा है लोगों को लेके, बॉलीवुड में एक्चुअली फीमेल फीमेल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मुझे इतना नहीं लगता है जितना मुझे रंग रूप को लेके लगता है। पहले लगता था, मतलब 5 साल में इंडस्ट्री इतनी चेंज हुई है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस जो है मैं पुराना शेयर कर रही हूँ कि जो मुझे देखने को मिला, कि जैसे लोग पॉइंट आउट करते थे कि यू डोंट लुक इन अ सर्टेन वे, लाइक यू डोंट लुक सॉफ्ट, और यू लाइक अभी लाइक यू डोंट हैव अ वेरी फेयर कॉम्प्लेक्शन और समथिंग लाइक दैट। सो वो उस तरीके से ऐसे हुआ कि मुझे अभी आई कांट चेंज ना हु आई बाय,
नहीं,
राइट?
दी बहुत
सो
अजीब बात
लेटर
है क्योंकि आज की डेट में भी 2023 में भी इंसान रंग को लेकर ऐसा कुछ सोच रहा है. आई मीन अमेरिका में भी कलर को लेकर बहुत ज्यादा है, रेशिज्म भी है बहुत ज्यादा. बट अभी भी हम उन्हीं चीजों में, पुरानी पता नहीं कितने सालों पहले चीजें जो थी
कितनी
अभी हम
छोटी
उन्हीं में ही
चीजें हैं ना,
लॉस्ट
ये
हैं.
है ना, कितनी बेमतलब और कितनी छोटी चीजें हैं।
एग्जैक्टली.
इंसान कितना बड़ा है और आप अटक जाते हो कि रंग कैसा है।
नहीं, वैसे हमारे सामने कितना बड़ा एग्जाम्पल है, प्रियंका चोपड़ा, उनका रंग डार्क है, शी इज प्रिटी डार्क. और स्क्रीन पर आप उसको मैनेज कर लेते हो रंग को, वो उतना डार्क लगती नहीं है जितने की वो हैं. बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कलर, इट्स अबाउट उनकी पर्सनालिटी, इट्स अबाउट उनका कॉन्फिडेंस. वो खुद बोलते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस ही था जिसने मुझे मिस वर्ल्ड बनाया. सो कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग. नो, आप उसको प्रैक्टिस करते रहो कॉन्फिडेंस को, एंड फिर आप जितनी अपने आप को इज्जत दोगे उतनी दुनिया आपको इज्जत देगी.
एग्जैक्टली यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। तो वो तो है, एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे बॉलीवुड में इतना इंटरेस्ट इसीलिए नहीं रहा क्योंकि वहां पे इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन मुझे देखने को मिला शुरुआती दौर में। एंड देन तेलुगु में मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि वहां पे मैंने ऑलरेडी एक मूवी की थी, वो रिलीज नहीं हुई, लेकिन उस टाइम पे जो ट्रीटमेंट और जो प्रोफेशनलिज्म और जो हर तरीके का जो हिसाब किताब था, प्यार जो मुझे मिला, एक वेलकमनेस जो मुझे फील हुआ वहां पे, वॉज समथिंग अमेजिंग। तो आई एम लाइक मुझे तो यही करना है
बेसिकली
काम।
आई गेस कि स्पेशली गर्ल्स के साथ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली प्रोफेशनली बट पर्सनली ऑल्सो, कि कोई हमें कैसा ट्रीट करता है वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है. तो अगर आप हमें अच्छे से ट्रीट करते हो, आप हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, वील डू एनी थिंग फॉर यू. बट इफ यू डोंट ट्रीट अस वेल, देन यू आर गॉन,
बाय।
यू आर आउट.
एग्जैक्टली दैट्स व्हाट। बट देन अगेन अभी अब मैंने कमर्शियल एड काफी सारे किए हैं, एंड और आई एम एक्चुअली अमेज कि कितना सब उल्टा हो गया है। नाउ दे वांट कि डार्क स्किन हो एंड देन वो सर्टेन लुक हो। नाउ इफ यू सी लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ एजेंसीज, लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, उनका पूरा परसेप्शन ही चेंज हो गया है। सो ये बात का जवाब मैंने इसलिए दिया कि व्हाई तेलुगु एंड नॉट बॉलीवुड, बिकॉज शुरू में मुझे ये देखने को मिला, कट टू नाउ कंप्लीटली चेंज्ड नाउ।
दैट्स गुड,
और
इट
वो
इज
टाइम पे
चेंज्ड.
मुझे इट हैज चेंज्ड,
दैट्स गुड इफ इट इज चेंज्ड, दैट्स गुड.
मोर ऑर्गेनाइज्ड, मच बेटर
अच्छा, एक बात
जैसा।
बताइए, बॉलीवुड इंडस्ट्री में दिव्या भारती का मर्डर हुआ, फिर SSR का मर्डर हुआ, और जब भी कोई भी मर्डर या सुसाइड होता है, सो कॉल्ड सुसाइड, आई वुड से सो कॉल्ड सुसाइड होता है, तो हमेशा उनको कूपर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है. आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? आप मुंबई में रहती हैं अभी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
मैं इसके बारे में ऑनेस्टली कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, बिकॉज आई एम नो वन टू से अबाउट इट। एंड कूपर हॉस्पिटल बेसिकली इसलिए जाया जाता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एंड एवरीथिंग। किसी प्राइवेट में
बट
जाके
दीज
आप
आर
फिर भी
सेलिब्रिटीज, सेलिब्रिटीज को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या लॉजिक
इररिस्पेक्टिव
है?
नहीं, बिकॉज ये
यहाँ
सुसाइडल चीजें होती है ना,
नहीं,
जो
यहाँ पे
भी
दिल्ली के आम लोग फोर्टिस हॉस्पिटल, मतलब वेल ऑफ लोग जो भी फोर्टिस हॉस्पिटल है यहाँ पे सब जाते हैं, बट कोई लॉजिक है इसका कि हमेशा कूपर हॉस्पिटल ही जाना है? क्या क्या घोटाला यहाँ
इसका
पे?
कोई घोटाला नहीं है। इसका लॉजिक सिर्फ यही है कि एनीथिंग अ लॉ जो है, या यहाँ की जो पुलिस है, वो सिर्फ कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स को मानती है। आप किसी लीलावती हॉस्पिटल हुआ या कोई भी नाना जो भी बड़े से बड़ा हॉस्पिटल का नाम लीजिए, देयर आर ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड इसके रिपोर्ट्स पे और इसके कहे पर पुलिस कुछ रिएक्ट नहीं करती है, सिर्फ कूपर हॉस्पिटल पे रिएक्ट करती है. सो एवरीथिंग, इफ यू हैव टू डू एन FIR और एनीथिंग, फिजिकल असॉल्ट भी हुआ है,
पर ये
एनीथिंग
वही
जो आप लॉफुली करना चाहते
पर ये
हैं.
वही कूपर हॉस्पिटल है जिसने पहले बोला था कि ये सुसाइड है, और बाद में अब पुलिस को कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि मर्डर है. तो बेसिकली वो ऐसे कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट मानते हैं जो अलग अलग रिपोर्ट्स देता है, एंड दे फाइन विद इट. एनीवे, लेट्स लेट्स कट दिस टॉपिक आउट. ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ. देखते हैं कि आपको इसका जवाब आता है नहीं. जस्ट जस्ट लाइक दैट. ओके, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड पैजेंट अलग अलग क्यों होते हैं? सिर्फ एक ही पैजेंट क्यों नहीं होता?
मुझे लगा
क्या लगा आपको?
मुझे लगा आप पूछने वाले होते हैं, आप पूछने वाले थे कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स तो अर्थ से ही होता है. पूरा
मैं एग्जैक्टली यही कहना
ब्रह्मांड.
चाह रही हूँ कि मिस वर्ल्ड जो है वो ऑलरेडी अर्थ का बन गया, मिस वर्ल्ड. अब मिस यूनिवर्स में क्या एलियंस भी हिस्सा ले रहे हैं जो कि वो मिस यूनिवर्स है? मतलब क्या लॉजिक है इसके पीछे?
इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे प्योर बिजनेस रन करता है. एंड दैट इज हाउ, अगर आप देखो, अगर आप, इट इज सो मेनी वुमेन, दे वांट टू कम्पीट इन दीज ब्यूटी पेजेंट्स, राइट? अगर इसको एक ही जगह में हम लोग कर देंगे, बहुत कम ऐसा रेशियो है जो बोलता है ये हमारे जगह में तो नहीं करना है, पर बहुत ज्यादा ऐसा रेशियो है जो करना चाहता है. अंदर ही अंदर सबकी ख्वाहिश होती है. सो दैट इज हाउ दे रन इट. एंड दे जस्ट वॉन्ट टू यू नो कैटेगराइज कि जितना मैक्सिमम चीजें हम कवर कर सके, एंड दे जस्ट वॉन्ट टू ग्लोरिफाई इट, बट अदरवाइज
ओके, एनीथिंग एनीथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड दैट यू वांट टू डिस्कस.
ऐसा इन पर्टिकुलर तो कुछ नहीं है मेरे दिमाग में जो मुझे डिस्कस करना है. तो आई ओनली वॉन्ट टू से कि अपने सपनों पर गिव अप मत करो. बिकॉज ये ना, मैंने एक बार कोशिश की थी, क्योंकि जब मैंने जॉब की थी तो वो टाइम पे मुझे बहुत गिल्ट होता था, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था, मेरा ये मानना है कि आप कितना भी लाइफ में कमा लो, कितना भी अच्छे से अच्छा भी कमा के आप गुची अरमानी तक पहुंचोगे, अच्छे से अच्छा कमा के आप मर्सिडीज बेंज फरारी तक पहुंचोगे, एंड क्या ही है, यू विल डाई, राइट? बट डू यू रियली वॉन्ट टू डाई जब आप मर रहे हो? काश मैंने ये किया होता, मेरी लाइफ में मैंने ये नहीं
रिग्रेट,
किया. डू
राइट,
यू रियली वॉन्ट टू डाई विद दैट रिग्रेट? इट्स ओके. तुम
एग्जैक्टली.
तो इट्स लाइक कि मुझे मर्सिडीज बेंज नहीं, मुझे शायद मैं एक्टिंग में इतना भी नहीं कमा पाऊं जितना और स्टार्स कमाते हैं, बट एटलीस्ट आई विल डाई डूइंग व्हाट आई लव.
यस, एग्जैक्टली. इनफैक्ट ये एक रिसर्च हुई थी जिसमें कि काफी सारे सीनियर सिटीजन से पूछा गया था कि आपकी क्या विश है, और उन सुन के लाइफ के बारे में पूछा गया था. तो उन्होंने बताया था कि यू नो व्हाट दे रिग्रेट, कि वो जो कुछ करना चाहते थे, विच दे वर रियली पैशनेट अबाउट, उनको वो कर लेना चाहिए था, उनको रुकना नहीं चाहिए था अपनी जिंदगी में.
पर
पर मैं
वो मनी
इसके साथ,
ड्रिवन नहीं होगा,
हाँ,
बट वो मनी ड्रिवन नहीं होगा वो
मनी
ड्रीम.
ड्रिवन नहीं होगा, तो मैं इसके साथ एग्जैक्टली यही बात बताना चाहूंगी. क्योंकि मैंने शिफ्ट करा था, मैंने भी शिफ्ट करा था एक एनफोर्समेंट ऑफिसर से, यू नो, एज अ स्पिरिचुअल गाइड.
बिग
तो
शिफ्ट,
या सो
बिग शिफ्ट, इट्स अ बिग
इट्स
शिफ्ट.
अ बिग शिफ्ट रियली. दो
या
व्हेन आई वाज एन असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, तो तब मेरे जो कलीग्स थे, हमारे जो सीनियर्स थे, तो हमारे वहां पे कुछ कंटेंट राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे जिसमें मैंने वही करा था जो मैं नेचुरली हूँ. मैंने उसमें हैप्पीनेस के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लिखा था जो मैं जीत गई थी कॉम्पिटिशन्स. तो वहां से उनको उनको भी ऐसा लगने लग गया था कि इसका इंटरेस्ट जो है वो कहीं और ही है, बिकॉज शी इज मोर इन टू दिस थिंग ओनली. तो खैर, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग कि जब भी हम जॉब से कोई ऐसी जगह पे शिफ्ट होते हैं दैट वी रियली लव टू डू, दैट वी रियली वॉन्ट टू डू एंड मेक अ करियर इन दैट, तो हमें बहुत सोच समझ कर एक रैशनल डिसीजन लेना चाहिए, जहां पर वी शुड कीप डूइंग द जॉब एंड कीप डूइंग दैट हसल. यू नो, आप एक बैलेंस आउट रखना चाहिए, बिकॉज लोग कहते हैं कि सब छोड़कर अपना एक चीज में चले जाओ. वो एक पॉइंट पर शायद सही था, पर आजकल के टाइम में जब हमारे एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, यू नो, एंड टाइम्स आर चेंजिंग सो क्विकली, लाइक वी हैड कोविड इन द रीसेंट ईयर्स, तो टाइम्स आर चेंजिंग सो क्विकली, सो वी शुड हैव अ डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ इनकम, जहां पे आपके अलग अलग सोर्सेज हो, जिसमें कि एक जॉब भी आता है. मतलब जब तक आपका बिजनेस पूरा सेटल नहीं हो जाता, जब तक आप अपनी फील्ड में पूरे तरीके से सेटल नहीं हो जाते, तब तक आपको एक इनकम सोर्स हाथ में रखना चाहिए. तो ये नहीं कि आप किसी पर डिपेंडेंट हो जाओ, तो वो भी जरूरी है. जब आप उतना कमाने लग जाओ कि जितना आप अपने जॉब से कमा रहे हो, देन मे बी यू कैन टेक अ कॉल.
यू कैन एंड आजकल इतना ब्यूटीफुल एरा है, द एरा दैट वी आर लिविंग इन, डिजिटल एरा, कि इतने सोर्सेज ऑफ इनकम है. लाइक मेरा खुद के इनकम, मेरे ख्याल से एक्टिंग से ज्यादा मुझे इंस्टाग्राम से आता है. द कंटेंट, यू नो, द कंटेंट दैट आई डू एंड द रेस्ट ऑफ द अदर थिंग दैट आई डू. सो डेफिनेटली इनकम सोर्सेज अपने जितने ज्यादा बना सके बना लेने चाहिए. एंड डोंट स्ट्रेस आउट, हमें ये लगता है कि हाँ ये भी करना है और ये भी करना है.
जल्दी करना है, ऐसा नहीं होता. जल्दी कुछ नहीं होता, नो शॉर्टकट्स
जल्दी कुछ नहीं होता.
एग्जैक्टली, यू हैव टू वॉक स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग.
एग्जैक्टली एग्जैक्टली.
ओके,
सो लास्ट में
एग्जैक्टली बोथ वर सेइंग द सेम थिंग. सो द कंक्लूडिंग वर्ड्स, योर कंक्लूडिंग वर्ड्स, देन आई विल गिव माय
keep doing your karma and don't worry about the result and don't give up on your dreams. As simple as that. Keep it simple.
Awesome. My concluding words are also exactly the same. Basically, हमारा जो podcast का नाम है कर्म प्रधान, अपने कर्म को सबसे ऊपर रखिए, प्रधान रखिए, प्रायोरिटी रखिए, और चाहे आप अपने गोल को आपने सामने रख लिया है एक बारी, बस उस पर वर्क करते जाइए. उसको स्ट्रेस आउट मत करिए कि मैं इसको अचीव नहीं कर पा रहा. कीप ऑन फाइंडिंग आउट वेज, बट डोंट गेट दैट स्ट्रेस इन योर माइंड. जस्ट कीप डूइंग योर कर्मा, और जैसे श्री कृष्ण ने हमें समझाया था, कर्म कर फल की इच्छा ना कर.
दैट्स एग्जैक्टली एग्जैक्टली.
थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर लिसनिंग, एंड वी विल सी यू सून अगेन नेक्स्ट वीक ऑन कर्म प्रधान. नमस्ते
नमस्ते.